मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स कक्षाओं में सभी छात्रों की वापसी। राज्य में 294 स्थानीय रूप से अधिग्रहित संक्रमण और 4 और मौतें दर्ज। और भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 98.18%, जो है अब तक का सबसे बेहतर आंकड़ा। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स में सभी छात्र कक्षाओं में लौट आए हैं। किंडरगार्टन, पहली और बारहवीं कक्षा के छात्र पिछले सप्ताह ही वापस कक्षाओं में चले गए थे। न्यू साउथ वेल्स के विपक्ष के नेता क्रिस मिंस का कहना है कि माता पिता को धैर्य रखने की आवश्यकता है, और ये वादा भी किया कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा।
Keep an eye on your kids, take it slow, speak to your teachers, speak to principals. They may have missed a beat over the last 12 weeks, that's fine. And if it's the case that there are a significant number of children that have fallen behind over the last 12 weeks of homeschooling, the New South Wales opposition will fight for more school counsellors and more school tutoring. We don't want any family or any student to fall behind because they've done the right thing and stayed home over the last 12 weeks.
राज्य में 294 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामले और 4 और मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 93% लोगों ने एक खुराक ली है, जबकि 84.8% ने दो खुराकें ली हैं। विक्टोरिया में 1461 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं और 7 मौतें भी दर्ज हुई हैं। बिना टीका वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें 2023 तक कई स्थानों से बाहर रखा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने आज पुष्टि की कि राज्य 25,000 से कुछ ही कम सक्रिय मामलों का प्रबंधन कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल मंत्री मार्टिन फोले का कहना है कि 7 लोगों की मृत्यु हुई है।
Our Victorian healthcare system with COVID-19 in our hospitals. Some 152 of those are in intensive care and 92 are currently on a ventilator. And very sadly, 7 people lost their lives yesterday in the reporting period to COVID-19. A woman in her 20s.
नवीनतम मौतों से वर्तमान प्रकोप से मृतकों की संख्या 230 तक पहुंच गई है। कल रविवार को राज्य द्वारा संचालित केंद्रों में 56,905 परीक्षण संसाधित किए गए और 27,859 कोविड-19 वैक्सीन खुराकें दी गईं। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 74% विक्टोरियन लोग अब पूरी तरह से टीकाकृत हैं। विक्टोरियन सरकार की घोषणा है कि लगभग सभी कोविड-19 प्रतिबंध अगले महीने समाप्त हो जाएंगे, जब 12 से अधिक आबादी में से 90% पूरी तरह से टीकाकृत हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वैक्सीन रोल आउट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जॉन फ्रीवेन का कहना है कि देश का वैक्सीन सलाहकार समूह जल्द ही बूस्टर शॉट्स पर अपनी सलाह जारी करेगा। उनका कहना है कि ये उम्मीद है कि सलाह उन लोगों को बूस्टर शॉट की सिफारिश करेगी जिन्हें 6 से 12 महीने पहले अपनी आखिरी खुराक प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के 73% पात्र लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि लगभग 87% ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की है। 2 नए टीकाकरण अभियान शुरू किए जा रहे हैं। एक का लक्ष्य रहेगा बचे हुए अंतिम 10 से 15% ऑस्ट्रेलियन लोगों की पहचान करना और दूसरा मूल निवासियों पर केंद्रित होगा। ऑस्ट्रेलिया के वैक्सीन रोल आउट कोऑर्डिनेटर जॉन फ्रीवेन ने कहा कि नया अभियान स्प्रेड फ्रीडम देश के उस अंतिम 10 से 15% पर केंद्रित है जिन्हें अभी आगे आकर टीका लगवाना है। उन्होंने एबीसी को बताया कि दूसरा अभियान फॉर ऑल ऑफ अस का उद्देश्य है ऑस्ट्रेलिया के अधिक मूल निवासियों को टीकाकरण के लिए राजी करना।
There's hesitancy in some areas, there's misinformation, there's complacency, so there's a range of challenges, but really encouragingly over the last fortnight, the first dose rates for Indigenous Australians have exceeded the national first dose rate. So that's a positive sign, and we're just hoping to keep building on that momentum.
Morrison सरकार कार्बन उत्सर्जन में कटौती की अपनी रणनीति मॉडलिंग का खुलासा करने से इनकार कर रही है. उसके ऐसा कहने का आधार है कि ये गोपनीय कैबिनेट सूचना है. ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री एंगस ट्रेलर ने मॉडलिंग पर एक जनहित प्रतिरक्षा का दावा किया है कि ये सूचित किया गया था या ये कैबिनेट विचार विमर्श का विषय था. गठबंधन सहयोगी नेशनल्स ने शुद्ध शून्य लक्ष्य के बदले में फेडरल जलवायु योजना में रियायतों की मांग की है. नेशनल सेनेटर ब्रिजिट मैकेंजी द्वारा आज की सुनवाई के लिए सीनेट के अनुमानों के विवरण का खुलासा नहीं होगा.
I'm not going to private discussions between the Prime Minister and the Deputy Prime Minister. I'm being very clear about the National Party's position, and it is that we don't support a more ambitious target than we already have on 2030. We're actually decreased our emissions in this country by 20%. I don't hear you actually applauding that at all, Senator Watt, and we did it without the Labor Party's carbon tax, I might say.
संसाधन और जल मंत्री कीथ पिट्सोदे के हिस्से के रूप में कैबिनेट में लौट आएंगे. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि श्री पिट संसाधन क्षेत्र के लिए एक शक्तिशाली आवाज हैं. न्यू साउथ वेल्स के पूर्व डेप्यूटी प्रीमियर जॉन बारिलारो ने राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी को बताया है कि एक क्षेत्रीय खेल सुविधा के लिए कई मिलियन डॉलर के अनुदान के पीछे की प्रक्रिया कई मायनों में असामान्य थी. इस प्रस्ताव को तत्कालीन राज्य कोषाध्यक्ष ग्लैडिस बैरी जिक्लियन और उनके गुप्त प्रेमी डैरन मैग्वायर ने समर्थन दिया था. 2016 में कोषाध्यक्ष के रूप में सुश्री बैरी जिक्लियन ने व्यय समीक्षा समिति के एजेंडे को नियंत्रित किया था. न्यू साउथ वेल्स इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या सुश्री बैरी जिक्लियन ने सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन किया था जब उन्होंने पूर्व वागा बागा सांसद डैरन मैग्वायर द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का समर्थन किया. श्री बारिलारो ने मैग्वायर को पेन द आर्स बताया.
It's a pain in the ass. He was a very, very strong local member and someone that really didn't let go. It was on the top of the bone.
भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं. 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं. कल रविवार को श्री शाह ने जम्मू कश्मीर में मकवाल बॉर्डर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और जवानों तथा स्थानीय कश्मीरी पंडितों, गुर्जर बकरवाल समुदाय और पहाड़ी समुदाय के साथ बातचीत की. इसके साथ ही शाह ने जम्मू कश्मीर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की. एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शुरू हुए विकास के युग को कोई नहीं रोक सकता. जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या की कई घटनाओं के कारण डर का माहौल है. और भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 14,306 नए मामले सामने आए हैं और रिकवरी रेट 98.18% है, जो अब तक की सबसे ऊंची संख्या है. भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1,67,695 है, जो कि पिछले 239 दिनों में सबसे कम है. और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 74 सेंट और भारत के 56.11 रुपये के बराबर है. खेल समाचारों में, अगले साल होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में बिना टीकाकरण वाले खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जानी है. टेनिस ऑस्ट्रेलिया की WTA प्लेयर्स काउंसिल को एक लीक ईमेल से पता चला है कि बिना टीकाकरण वाले खिलाड़ियों को अभी भी एक होटल में 14 दिनों के संगरोध से गुजरना होगा. टेनिस पत्रकार बेन रॉथनबर्ग ने 9 न्यूज़ को बताया कि ईमेल का उद्देश्य खिलाड़ियों को स्पष्टता देना था. सरकार ने पिछले हफ्ते ही जोर देकर कहा था कि दुनिया के टेनिस सितारों को ओपन में भाग लेने के लिए कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाने की आवश्यकता है. अब इसके कारण नोवाक जोकोविच की भागीदारी पर संदेह हो रहा है. जोकोविच ये नहीं बता रहे कि क्या उन्होंने टीका लगवाया है या नहीं. और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी मंगलवार को पर्थ में बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। कैनबरा में भी धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।